अपने साथियों को ले लेकर के सब इकट्ठे हो जाए। तब फिर उन्होंने सुग्रीव ने नील को बुलाया, नील को बुला के कहा कि देखो सब दिशाओं में जो बंदर रहने वाले हैं, यूथपाल हैं, यूथपालों को मेरे यहाँ बुलाओ और वे यूथपाल अपने अपने यूथों को अपने अपने बंदरों को लेकर फिर अपने आप लेके आ जाएंगे। 15 दिन में सब बड़े बड़े बानर यहाँ आ जाने चाहिए, 15 दिन के बाद कोई आएगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर इधर भाई बरसात की ऋतु समाप्त हो गई और बरसात की ऋतु समाप्त होने के बाद राम जी महाराज कहने लगे कि देखो लक्ष्मण बरसात खत्म हो गई है, एक एक दिन मैंने जग जग करके रात्रियां और दिन मैंने जग जग करके निकाला है। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं। राम जी ने कहा कि देखो समय पर तो हमको अधीर होना ही पड़ेगा ना, ये इतनी सुंदर शरद ऋतु है कि जिस शरद ऋतु के अंदर वनस्पति एकदम खिल जाती है, कमलनियां पूर्ण रूप से खिल जाती है, आवागमन के लिए रास्ते साफ हो जाते हैं। 4 महीने से हम प्रतीक्षा कर रहे थे, राजा लोग भी अपने अपने वाहनों को जहां तहां रोक देते हैं, लेकिन अब तो अपने को चाहिए कि 100 वर्ष के समान हमने 4 वर्ष निकाले हैं, अब तो कम से कम सुग्रीव हमारे पर कृपा करें। देखो ये सुग्रीव इतना समझदार होते हुए इस बात को कैसे भूल गया कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वो बाण मेरे लिए अभी भी तो तैयार है ना, वो बाण कोई मेरा संकुचित थोड़ा ही हो गया है, इसलिए जाकर तुम बाली को समझाओ। एकदम लक्ष्मण जी बिगड़ गए कि नहीं महाराज, बड़े भाई को बड़े भाई ने मारा तो छोटे भाई को छोटा भाई मारेगा, मैं जाता हूँ, मैं सुग्रीव को किसी प्रकार जिंदा नहीं रहने दूंगा, उसको अपना राज्य मिल गया तो हमको भूल गया, आपके कष्ट को भूल गया, उसकी बुद्धि मारी गई, मेरे बाण से उसकी अकल आ जाएगी। राम जिनगारी मारना नहीं उसको, तुम जो है क्रोध करते हो, तुम्हारा क्रोध बस में नहीं रहता, तुम उसको जाकर केवल समझाओ। अब हनुमान जी अब जो है ये लक्ष्मण जी महाराज वहां से रवाना हुए, राम जी ने सौगंध खिला के कहा देख तुम किसी प्रकार से सुग्रीव का अपमान नहीं करोगे, तुम सुग्रीव को मारोगे नहीं। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा ठीक है मैं वचन देता हूँ। लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में रवाना हुए, कई वृक्ष तो भाई लक्ष्मण जी के पैर रखने से टूट जाते थे, और लक्ष्मण जी जब क्रोध किए हुए चले तो सब पशु पक्षी डरने लग गए, और जब किष्कंधा के पास में गए तो किष्कंधा के चारों ओर रक्षा में जो बानर थे वे बानर अपने हाथ में कई पर्वत शिखर ले लेकर के आए, और लक्ष्मण जी बड़े क्रुद्ध हैं ऐसा करके एक तरफ भागने लग गए। अब धीरे धीरे लक्ष्मण जी महाराज सुग्रीव जी के भवन की ओर रवाना होते हैं, वहां जाते हैं, वहां जाकर के और बड़े बड़े भवनों को देखते हैं, गुफा के अंदर भवन बनाए हुए, बाहर से तो लगती है जैसे कोई पर्वत की गुफा है, लेकिन गुफा के अंदर वो पर्वत इतना जो है बड़ा है, अंदर से खोखला है, वहां सब प्रकार का आराम, ओह कितने बड़े बड़े महल, कैसे छोटे छोटे उनके झरोखे, और कैसे वहां पर अच्छी हवा मिलती है, ऐसे वो देख करके लक्ष्मण जी महाराज आश्चर्य में डूब गए। और उसके बाद वहां जितने बानर थे वे बानर भी हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े हो गए। इतने में ये अंगद जी महाराज सुग्रीव के महल के वहां पहुंचकर बाहर ही बैठ गए, क्योंकि शिष्टता यही है महल के अंदर जाना उचित नहीं है, जब तक अपने आगमन की सूचना मिलने के बाद वो राजा स्वयं न बुलाए तब तक बाहर ही बैठे रहे। सुग्रीव को जाकर जो है अंगद जी ने बताया कि देखो महाराज लक्ष्मण जी बड़े क्रोध के अंदर अपने यहाँ किष्कंधा में आ गए हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उनको अंदर बुलाइए, हे तारा जी, और अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया कि आप समझाइए और सुग्रीव जी को कहिए, माने महाराज को कहिए कि वो लक्ष्मण को यहाँ पर बुलावे। तब इस प्रकार से अंगद ने आगे भी कहा कि बुलाने से नहीं होगा, लक्ष्मण जी को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि राम और लक्ष्मण ने आपके लिए बहुत बड़ा काम किया है, अतएव उनकी ताकत को समझते हुए हनुमान जी ने जैसा कहा है उसके अनुसार अपने को इनकी सेवा का कार्य बताना चाहिए। ये अब युद्ध का समय है, माने अब रावण के ऊपर युद्ध करने का समय है, उसके लिए पहले सीता की खोज की बात है वो सब लक्ष्मण जी को बतानी चाहिए। और जब लक्ष्मण जी मिले तो महाराज को चाहिए कि वे एक ऋणी पुरुष के समान जो है उसे प्रणाम करें और उसके बाद उनको प्रसन्न करें। ये सब बातें अंगद जी ने कही। सुग्रीव ने कहा अपने मंत्रियों से कि आप लक्ष्मण को बुला लाइए, परंतु हनुमान मेरे मन में बड़ी घबराहट हो रही है, मैंने कोई ऐसा वैसा काम किया नहीं है, मुझ पर ये क्यों नाराज है, लक्ष्मण जी क्यों नाराज हो गए हैं, राम जी मेरे पर क्यों नाराज है। यदि न खलवस्ति ममत्रासु, देखो राम नाराज हो जाए लक्ष्मण नाराज हो जाए इतना कष्ट की बात नहीं है, एक मित्र का मैं कार्य नहीं कर सका उससे पहले ही वो नाराज हो जाए तो ये विश्वासघात का मित्र दोष का मुझे बड़ा भारी कष्ट हो रहा है। हनुमान जी ने कहा कि बात बिल्कुल ठीक है, परंतु अब समय हाथ से निकल गया, आप उनको ये कहना कि मैंने उद्योग किया है, आपने किया भी है, जब ये बात समझेंगे तो फिर अपना आप ही क्रोध से आपको मुक्ति दिला देंगे। फिर लक्ष्मण जी महाराज अंदर गए, सुग्रीव ने उनका बड़ा स्वागत किया, वहाँ की स्त्रियाँ वहाँ के सेवकों को देखा सब खूब धनी है, उन सबको देख करके और जो है सुग्रीव के पास से फिर मिलने के लिए सुग्रीव के पास में गए। उससे पहले तारा ने कहा कि हे महाराज एक बार ठहरिए, आप बोलिए कि आप इतने नाराज क्यों हैं। सुग्रीव ने तारा को भेज करके कहा कि देखो वो तुम स्त्री हो ना, स्त्री के ऊपर लक्ष्मण जी कभी नाराज नहीं होते हैं, नहीं स्त्री सुमहात्मा ने केचित कुर्वंती दारुणम, क्रोध भी होगा ना तो स्त्री की करुणपूर्ण वचना से वे दयालु महापुरुष प्रसन्न हो जाएंगे और वो किसी प्रकार से उपालम्ब नहीं देंगे। तब तारा ने उनको कहा कि हे लक्ष्मण जी आप क्रोध किस बात को लेकर कर रहे हैं, क्यों नाराज है। लक्ष्मण जी ने कहा तारा तुमको पता नहीं है जो रात दिन सीता के वियोग में है उन सीता की प्राप्ति के लिए हम आपके महाराज सुग्रीव कोई भी तो काम नहीं कर रहे हैं, 4 महीना भी व्यतीत हो गया, यहाँ कोई मैं हलचल नहीं देख रहा हूँ, कोई हमारे पास सूचना भी तो नहीं आ रही है, कोई यहाँ आप लोग मिलने के लिए भी नहीं आए, कुछ आपको किसी प्रकार से समाचार लेने के लिए नहीं आए, फिर आप नाराजगी की बात पूछते हैं, आप कैसे भूल गए कि जो बाण बाली के लिए लगा था वो बाण राम जी के तुनीर से खाली नहीं हुआ है। तारा ने कहा कि हे लक्ष्मण जी क्रोध करने से तो कुछ नहीं होगा ना, क्रोध करने से तो कुछ नहीं होगा। देखो लक्ष्मण जी अब क्या बताए, आप बच्चे हो, आप बच्चे भी हो और आप धर्मात्मा पुरुष हो, ये महाराज बिचारे बहुत कष्ट पाए राज्य प्राप्ति के लिए, इनको बिचारों को राज्य मिला स्त्री मिली इसके सुख भोग में इनको फुर्सत नहीं मिलती है, रात दिन मदिरा पिए हुए पड़े रहते हैं और एकदम राज्य के अंदर मदांत हो गए हैं, इसलिए क्षमा रूपी आपके पास जो शस्त्र है ना इसको काम में ले, क्रोध रूपी अस्त्र को काम में मत ले। तो उद्योग आपका किया है, सुग्रीव जी ने फिर भी सब दिशाओं में बंदरों को भेजा है, देखो वो उधर से करोड़ों बंदर वो आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो है बहुत करोड़ों बंदरों को भेजा है, उधर से भी सब दिशाओं से बंदर आ रहे हैं। अच्छा इन्होंने सब जगह बंदर भेजे बुलाने के लिए कि हाँ भेजे, 15 दिन की अवधि दी है। अच्छा अच्छा कितने दिन बीत गए कि थोड़ा सा समय बाकी है, तो कोई बात नहीं है समय बाकी है तो हम यही है और हम इनको समय की अवधि पर जितने बंदर आएंगे उनके साथ इनको लेकर के जाएंगे। सुग्रीव सामने मिले, अब सुग्रीव के पास में ले गए उनको, सुग्रीव खड़ा हुआ है और यो हाथ फैलाया है, आओ आओ ओ राजकुमार लक्ष्मण जी आओ आओ आओ, देखो देखो राजकुमार जी आप मेरी दशा को देखकर माफ कर देना, ये राज्य ये भोग मुझे बहुत दिनों के बाद मिला है, और जो राजा अपने उपकारी मित्र को भूलता है वो तो बड़ा भारी कृतज्ञ और बड़ा भारी पापी होता है, मेरे मन में कोई कृतज्ञता का भाव नहीं है, मैंने सब तरफ बंदरों को भेज दिया है लेकिन फिर भी आपका क्रोध करना भी सही है क्योंकि आपने तो मेरे कष्ट को सुनते ही दूर कर दिया, एक ही दिन में दूर कर दिया, लेकिन मैं यहाँ बेसुध भोगों में पड़ा रहा ये तो मेरी गलती है, लेकिन आपके प्रति कृतज्ञता का काम करना मेरा बिल्कुल भी भाव नहीं है। तो फिर तारा ने कहा कि देखा लक्ष्मण जी, हमारे महाराज वास्तव में सठ नहीं है और कृतघ्नि भी नहीं है, किसी प्रकार से ये विषयों में फंस गए हैं। लक्ष्मण माफ करो, छोड़ो, आंख बंद कर लो। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए वो भी काम में क्रोध में कहीं फंस जाते हैं, तो भगवान भी तो उनको क्षमा करते हैं, आप भी क्षमा करो। लेकिन एक बात, मेरी बात को गहराई से सुनो। रावण के यहाँ, अब बताओ, लाओ रावण के यहाँ संख्या बताते हो। रावण के यहाँ लंका में कितने राक्षस हैं, मैं आपको बताती हूँ कि शतकोटि सहस्राणी 100,000 करोड़ लंका में राक्षस हैं, और जोड़ना अभी क्या हुआ है, और 36,000 लाख और 36,000 और 3600 इतने राक्षस हैं। ये मैं जानती हूँ क्योंकि बाली ने मुझे ये संख्या बताई थी। और हमारे बानरों की संख्या कितनी है वो असंख्य बानर कुछ पता नहीं है उनका, सारी संख्याएं पार हो जाएंगी वहां पर। उन संख्याओं के विषय में आपको क्या बताएं, हमारे ऋक्षकोटि सहस्राणी कई हजार करोड़ तो रीच है, और काले मुंह के और लाल मुंह के बानरों का तो कोई अंत ही नहीं है, और दूसरे कोटियां अनेकास्तु, और कितने कितने करोड़ तो यूथप है, सब यूथप वहां राक्षस तो है सब मिलाकर के, और हमारे यूथपों की संख्या है। यूथप कहते हैं बड़े समुदाय का मालिक, तो करोड़ों की संख्या में, करोड़ों नहीं अरबों की, खरबों की संख्या में हमारे पास में यहाँ बानर है। अतएव आप किसी प्रकार से आप चिंता मत करो और सुग्रीव जी को आप माफ कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा कि आओ सुग्रीव, तुमने सत्य सत्य बात बता दी, आओ छाती से मिलो। बड़े प्रेम से वो मिले और सुग्रीव ने कहा कि देखो, ये राम जी के प्रसाद से मुझे सब कुछ मिला है, मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूँ, और सब राजाओं को, सब बंदरों को बुलाने के लिए मैंने बोल दिया है। अब यदि आप यहाँ से कहो तो मैं अपने सब राम जी के पास में चलते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, अपने राम जी के पास जाएंगे, सब बंदरों को लेके जाएंगे, उनके मन में विश्वास होगा कि ये सब लोग हमारे कार्य में लगे हुए हैं। उसके बाद जो है वहां से वे सब लोग रवाना हुए। हनुमान जी को कहा सुग्रीव ने, हनुमान जी ये जो महेंद्र पर्वत से, हिमालय पर्वत से, विंध्य पर्वत से, कैलाश पर्वत से और तरह तरह के पर्वतों से जो आए हुए हैं यहाँ करोड़ों की संख्या में बानर, जो पश्चिम दिशा से आए हुए हैं, उन सब को लेकर आप प्रश्रवण पर्वत की ओर रवाना होइए, और बड़े बड़े पर्वतांत में रहने वाले और समुद्र के किनारे रहने वाले, अनेक जंगलों में रहने वाले और तपस्वियों के आश्रमों के आसपास रहने वाले, पृथ्वी के ऊपर जितने बानर हैं उनको भी लेकर के आप आओ। करोड़ों बानरों को जो जिनको मैं भेजा है, यदि वे यहाँ सब आ जाते हैं तो उनको भी आप यहाँ प्रश्रवण पर्वत की ओर भेज देना, और आप भी उनके साथ आ जाना। यदि कोई हमारे कहे हुई आज्ञा पर नहीं आते हैं तो उनको फिर अंत में मृत्यु दंड मिलने वाला है। पर्वत संकाशा, जितने हमारे पर्वत के समान आकृति वाले विशाल बानर जल्दी से जल्दी प्रश्रवण पर्वत पर आ जाए। हे वायुपुत्र, ये कार्य मैं तुमको सौंप करके प्रश्रवण पर्वत पर राम के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। बानर राज की बात सुनकर के जितने वहाँ पर आए हुए बंदर थे, सब बंदर वहाँ से रवाना हुए। देखो कौन कौन आए हुए थे कि एक कज्जल गिरी से 3 करोड़ जो है बानर आए हुए थे, वे आए। अस्ताचल पर्वत की ओर से 10 करोड़ बानर आए हुए थे। कैलाश पर्वत से 1,000 करोड़ बानर आए हुए थे। हिमालय के ऊपर से भी 1,000 को 1,000 से गुणा करने पर जितनी संख्या होती है उतने बानर आए हुए थे। और विंध्य देश से कई हजारों करोड़ों को 1,000 से गुणा करने के पर जितने बंदर होते हैं उतने बंदर आए थे। क्षीर सागर के तट के ऊपर रहने वाले बानर वो आए थे, और नारियल के वृक्षों के वहां पर रहने वाले बानरों की कोई संख्या नहीं है, वो बानर आए। और एक हिमालय के पास महाद्रुम नाम का एक वृक्ष है, और उस वृक्ष के वहां पर भगवान शंकर ने यज्ञ किया था तो पशु वहीं पर बांधा गया था। उस वृक्ष का बड़ा अच्छा फल है तो हिमालय के जितने बंदर हैं उस वृक्ष के उत्तम फल खाने के लिए वहां पर लगे हुए हैं और कितने ही बानर उसका फल ले ले करके पत्ते ले ले करके और तरह तरह की वस्तु ले ले करके बंदर सेना में आ रहे हैं ताकि एक बार थोड़ा सा फल खा लेता है उसको फिर कई महीनों तक खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बंदर भी दौड़े दौड़े अब चले आ रहे हैं। इस प्रकार से किष्कंधा बंदरों से भर गई है, पट गई है। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि वाह देखो सुग्रीव इतने बंदर हैं आपके कि अभी नहीं आए महाराज, अभी तो आए ही नहीं है, ये तो यहाँ इर्द गिर्द रहने वाले थोड़े से एक बंदर आए, बंदर तो अब आएंगे तब देखना। अब सुग्रीव जी महाराज लेकर के रवाना होते हैं तब एक पालकी के अंदर सुग्रीव और ये लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं। बंदर लोग चारों तरफ से इनको घेरे हुए प्रश्रवण पर्वत पर बैठ चले जाते हैं। वहां जाकर राम जी महाराज के चरणों में सब प्रणाम करते हैं। राम जी महाराज कहते हैं इतने में सब बंदर आ गए, इतने में वो बंदर लोग भी सब आ गए, हनुमान जी वगैरह जिन बंदरों के लिए कहा था वो भी आ गए। बंदरों के आने के बाद राम जी महाराज ने कहा आइए सुग्रीव, धर्म का अर्थ का और काम का समय के अनुसार सेवन करना चाहिए, किसी एक का ही हरदम सेवन करने से उसमें भी धर्म और अर्थ को छोड़कर केवल काम का सेवन करने से उस व्यक्ति का वैसे ही पतन होता है जैसे कोई वृक्ष की टहनी के अग्रे भाग पर बैठ जाए और नींद देने लग जाए, वो जैसे गिर जाता है ऐसी उसकी दशा होती है। देखो जो हमारे उपकारी मित्र होते हैं उनके दिल को सदा ही जीतना चाहिए। सुग्रीव ने कहा महाराज मैंने तो जो कुछ प्राप्त किया है सब आपकी कृपा से प्राप्त किया है और सब आप ही का है, सब बंदर लोग अब आ रहे हैं, अब मैं कितने बताऊं महाराज, हजारों को हजार से फिर उसको फिर हजारों से और फिर करोड़ों से गुणा करो तो भी महाराज उनकी संख्या का कोई अंत नहीं है। राम जी महाराज ने सुग्रीव से कहा वाह सुग्रीव बहुत अच्छा किया तुमने, ये आज का सूर्य बहुत अच्छा उदित हुआ, तुम्हारे जैसे लोग इस धर्म कर्म में लगते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तब इतने में ही बहुत से नदियों के पास पर्वतों के पास समुद्रों के पास रहने वाले बानर आए। अब वो बताने लगे महाराज ये शतबली बानर है, ये शतबली बानर ये 10,000 करोड़ बानरों के साथ आए हैं और ये तारा के पिता हैं, ये अपने साथ में हजारों करोड़ बानरों को लेकर के आए हैं और ये रुमा के पिता हैं, ये अपने साथ में ये हजार करोड़ बानर लेकर के आए हैं, ये जो केसरी नाम के बानर जो हनुमान जी के पिता हैं इनके पास तरह तरह की जाति के बानर हैं और तरह तरह की आकृति के बानर हैं, इनके साथ में कितनी संख्या है पता नहीं है। ये जो गवाक्ष नाम का जो बानर है ये लंगूरों को लेकर के आया है 1,000 करोड़ को लेकर के, ये धूम्र नाम का बानर ये 2,000 करोड़ बानरों को लेकर आया है, ये पनस नाम का बानर है ये यहाँ 3 करोड़ को लेकर के आया है, ये नील नाम का बानर इसने अपने पीछे 10 करोड़ बानर रख रखे है वो लेके आया है, ये जो गवय है ये 5 करोड़ बानरों के साथ आया है, दरीमुख है ये अपने साथ में 1,000 करोड़ यूथपों को लेकर के आया है, इसके पीछे कितने बानर है पता नहीं है, मैंद और द्विविध है ये दोनों करोड़ को करोड़ से गुणा करो और फिर इसको 1,000 से गुणा करो उसकी जो संख्या है उतनी संख्या में आए हैं, गज के पास में 3 करोड़ बानर और ये हमारे रीछराज भालुओं के स्वामी जामवंत जी ये 10 करोड़ भालुओं के साथ आए हैं, ये रुमण नाम के बानर अपने पास में 100 करोड़ बानरों को लेकर आए हैं और ये गंधमादन पर्वत ये गंधमादन जो है बानर ये 1,000 को 1,000 से गुणा करो फिर 100 से गुणा करो और फिर 1 करोड़ से गुणा करो, इतने बानर लेके आए हैं। और ये अंगद हमारे जो युवराज अंगद है जो अपने पिता के समान पराक्रमी है जो तारा के पुत्र है इनके अधिकार में 5 करोड़ बानर रहा करते हैं और इंद्रजानु है इसके 11 करोड़ इनके पास में रहने वाले हैं। रंब नाम के बांदर के पास में 10,000 को 1,000 से और फिर 100 से गुणा करें उतने बांदर हैं। और ये हनुमान जी महाराज, इनको तो हमने करोड़ों बांदर सुपुर्द कर रखे हैं। नल है ये भी 100 करोड़ बांदरों के, 100 करोड़ को 1,000 से और 1,000 को फिर 100 से गुणा करो, इतने बांदर के साथ है। ऐसे ये ददीमुखी ब्राह्मण है, सद ददीमुखी बानर है। ये ददीमुखी बानर 10 करोड़ बांदरों के साथ में यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा और कितने हैं, यूथपा अनेका, कितने कितने बानर हैं हम कह नहीं सकते हैं। सबको कहने के बाद अब जो है सुग्रीव जी ने कहा कि महाराज अब हम आपको चारों दिशाओं में एक झुंड बना करके चारों दिशाओं में बंदरों को भेजते हैं। अब इन बंदरों को कौन कौन सी दिशा में कहां कहां स्थान देखना है ये अब अपने आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बड़ा रोचक प्रसंग आगे कहने का विचार बना है। वाल्मीकि रामायण आज के युग में बहुत ही श्राव्य ग्रंथ है। गहराई से सुनने के लिए और इसका गहराई से अध्ययन करने के लिए यदि हम विचार करें तो वाल्मीकि रामायण बड़ा आश्चर्य पैदा करने वाला और बड़ी नई नई बातें बताने वाला है। वाल्मीकि रामायण के भूमंडलीय ज्ञान से, ऋषि मुनियों के ज्ञान का अनुमान लगता है कि वे एक जगह बैठे हुए किस प्रकार भुवन कोश का ज्ञान कर लेते थे। सूर्य संयमात भुवन कोशक ज्ञानम, पातंजल योग शास्त्र में लिखा है कि यदि सूर्य का संयमन किया जाए तो भुवन कोश का ज्ञान होता है, पूरे भुवन का ज्ञान होता है। वाल्मीकि जी को कैसा ज्ञान था इस विषय में आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा। जब वाल्मीकि जी महाराज सुग्रीव के मुख से भूमंडल का वर्णन करेंगे तो स्वयं राम को आश्चर्य हुआ। तो ये वाल्मीकि रामायण एक ऋषि का प्रसाद है जिसको भगवान ने अपने हथेली में लिया है, स्वीकार किया है। भगवान से भी बढ़कर भगवान की कथा है। इस बात को चरितार्थ करने के लिए वाल्मीकि रामायण का सबसे बड़ा उदाहरण मिलेगा, क्योंकि भगवान इसके चरित नायक होकर स्वयं भगवान ही वाल्मीकि रामायण को सुनते हैं। और किन्हीं ऋषि मुनियों के मुख से सुने तो कोई आश्चर्य हो, यहां तो छोटे छोटे दो बालक लव और कुश के द्वारा सुन रहे हैं। और व्यावहारिक दृष्टि से अभी भगवान ने उन दोनों बालकों को ऋषि बालक ही समझ रखा है। सुनते सुनते भगवान आश्चर्य करते हैं कि कैसे मेरे द्वारा ये लीला हुई है। माने भगवान को लीला करने में आश्चर्य नहीं हो रहा है, लीला के सुनने में आश्चर्य हो रहा है। भगवान को लीला में आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, लीला में तो भगवान बुरी तरह से रोए हैं, परंतु लीला के सुनने में भगवान आनंद मग्न हो जाते हैं। भगवान अपने ही विरह को सुनकर के आनंदित होते हैं, अपने ही दुख को सुनकर के सुखी होते हैं। ये वाल्मीकि रामायण का ही ऐसा प्रभाव है कि संपूर्ण जगत को इसने वश में कर लिया। वाल्मीकि रामायण कहने के लिए आदि काव्य है, परंतु ये आज भी सबके हृदय में बहुत सम्मान की योग्य है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर की विशेष अनुकंपा होती है अथवा भगवान के चरणों में अनुराग रखने वाले सत्पुरुष महापुरुष दिव्य पुरुष उन महापुरुषों की कोई अव्यक्त रूप से कृपा होती है तभी वाल्मीकि रामायण सुनने का भाव पैदा होता है। हम लोगों पर संतों की और भगवान की कृपा है, क्या पता भाई हमारे पास प्रमाण पत्र है। कौन सा प्रमाण पत्र है कि हम वाल्मीकि रामायण सुनते हैं? नहीं तो इस कलयुग के अंदर हमारी क्या ऐसी सामर्थ्य है कि हम घर गृहस्थ का काम धंधा छोड़कर मौसम की प्रतिकूलता होते हुए भी वाल्मीकि रामायण को उत्साह के साथ सुने? ये अपने हाथ की बात नहीं है। वाल्मीकि रामायण को कहना बड़ा दुर्लभ है तो सुनना और भी ज्यादा दुर्लभ है। इसलिए भगवान की कृपा से ऐसा सुयोग मिल गया है, ये जीवन में बार बार तो मिलने वाला ऐसा सुयोग होता नहीं, क्योंकि ऐसे अवसर कम ही मिलते हैं। महापुरुष भी कम मिलते हैं, फिर उनकी कृपा भी कम मिलती है। महापुरुष कम है तो कम ही लोगों को कृपा मिलेगी। महापुरुषों के यहाँ कृपा करने में कोई कमती ज्यादा भेद नहीं होता, लेकिन महापुरुष होते भी कम ही है और कम में भी कम, कम में भी कम, कम में भी कम, और उसमें आप हम सबने तो बहुत बड़ा अभाव देख ही लिया है। ऐसी स्थिति में किस प्रकार से भी महापुरुष अपने लोगों पर कृपा करते हैं वो तो वो ही जाने, पर वाल्मीकि रामायण जैसा अपने को ये महाकाव्य सुनने को मिलता है, ये भगवान का प्रसाद मान करके बड़े प्रेम से इसका श्रवण करना चाहिए। आइए अब आप हम सभी पहुंचते हैं प्रश्रवण पर्वत पर। प्रश्रवण पर्वत इसका नाम क्यों है कि यहां हरदम बरसात होती रहती है। भगवान सीता के लिए बड़े व्याकुल थे, चातुर्मास का समय और उसमें भी भादो मास बास और भादो मास की वर्षा से राम जी महाराज बहुत खुश हुए थे। कल भी वही कल बरसात का विशेष वर्णन हुआ और भगवान ने एक विशेष कृपा करके वर्षा भी दी और कल ही कहा कि भादो की वर्षा कितनी अच्छी, यहाँ लिखा राम इसमें रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कल ही सुनाया था। बरसात का समय व्यतीत हुआ और उसके बाद भाई भगवान प्रतीक्षा करने लगे कि सुग्रीव ने हमारे लिए कुछ भी कार्य नहीं किया। लक्ष्मण जी गए और लक्ष्मण जी को तारा ने समझाया कि लक्ष्मण जी सारी दुनिया में आप जैसे लोग नहीं होते, जो विषयों में नहीं फंसते ऐसे लोग आप जैसे ही होते, गिने चुने, नहीं तो राज्य मिल जाए, परिवार मिल जाए और वैभव मिल जाए, सत्ता मिल जाए तो उसका मद और उसमें आसक्ति किसकी नहीं होती। लक्ष्मण जी कोई आप जैसों की नहीं होती। बेचारे सुग्रीव पर कृपा करो, ये कृपा के योग्य है, क्रोध के योग्य नहीं है। क्रोध तो उस पर करो कि जो जानकार है और जानता नहीं है। बेचारा सुग्रीव विषयी है। देखो रामायण में तीन प्रकार के भगवान के भक्त हैं, एक तो विषयी भक्त और एक साधक भक्त और एक सिद्ध भक्त। तो हमारे ये भक्त है सुग्रीव जी, ये विषयी भक्त है, माने इतने विषयी थे परंतु जब उनको याद दिलाया कि अरे भगवान का काम बाकी है तो उन्होंने विषयों का त्याग किया। विषयी भक्त का अर्थ ये नहीं होता कि विषयों में ही पड़ा ही रहे और भक्ति भी करते रहे, ऐसा होता नहीं है। विषयी भक्त तो वो है कि जो भक्ति करते हुए किसी कारण से विषय में फंस गया लेकिन याद दिलाते ही वो विषयों से निवृत्त होकर वापस भक्ति में लग गया, वो विषयी भक्त होता है। विषयी भक्त का ये अर्थ है ही नहीं कि विषयों में ही पड़ा रहे, ये अर्थ नहीं होता। क्योंकि सुग्रीव जी महाराज को याद दिलाया कि भाई आप राम जी का काम छोड़ करके यहाँ अपने विषयों में मस्त रह रहे हो, ये क्या बात है। तुरंत याद आ गई, ये बात बहुत गलत हो गई हमसे, ये हमसे भूल हो गई। तो ये बात जाकर के राम जी से उन्होंने क्षमा याचना भी की सुग्रीव ने। देखो गलती हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं, गलती हो जाए, विषयों में आसक्ति होना कोई इतना दोष नहीं है जितना विषयों में आसक्त होने के बाद इस दोष को दोष रूप से न जानना, इसको अच्छा मानना, ये ज्यादा दोष है। विषय की आसक्ति से या विषय के सेवन से जीव का इतना पतन नहीं है जितना विषय की आसक्ति को अच्छा मानना, ये पतन का रमा काम है। इससे ज्यादा पतन होता है, ज्यादा क्या महापतन होता है। इसीलिए भागवत में लिखा है कि विषयाश्चगर्रयन्, यदि विषयाशक्ति है, विषय को भोग रहे हो तो इसकी निंदा करते हुए इसका सेवन करो। कि निंदा करते हुए सेवन करने से क्या होगा कि विषय सेवन के साथ साथ में निंदा का भी संस्कार हमारे अंदर पड़ेगा। देखो निंदा करना बुरी बात है, शास्त्र में कहा किसी की निंदा मत करो, लेकिन अपने द्वारा यदि विषय की आसक्ति देखी जाती है अपने में, उसकी निंदा करो। ये निंदा की वृत्ति दी भगवान ने हमको, इसलिए हम तो लोगों की निंदा करते हैं। एक बार भाई जी के पास एक आदमी, भाई जी का मतलब भाई जी हनुमान प्रसाद जी पौददार, उनके पास में एक आदमी गया और वो आदमी जाकर भाई जी के सामने किसी की खूब निंदा करने लगा। भाई जी अपना कल्याण का काम करते थे, वो सब देख रहे थे, देख वो निंदा करता गया भाई जी करते लिखते गए, कोई काम था करते गए, अपना ध्यान इधर रखा है। उसने कहा भाई जी आप सुनते हो कि नहीं, सुनो तो सही मेरी बात। भाई जी ने वो अपना काम यूं रख दिया, हाँ भाई कहो, तो फिर सुनाया, फिर वही निंदा ही निंदा, वो ऐसा कर रहा था, वैसा किया, ऐसा करते करते भाई जी आंख बंद कर लिए और भाई जी रोने लग गए। भाई जी वो रोने लगे तो उसने कहा भाई जी आप रोए क्यों, कि तूने तेरी बात कह दी ना पूरी, कि बात पूरी कह दी। भाई जी ने कहा कि तू जितने निंदा उस आदमी की कर रहा है वो सारे दोष मेरे में है, सारे दोष मेरे में, मैं क्या करूं बता। तू इतना लज्जित हुआ, इतना लज्जित हुआ, कहने लगा भाई जी आप तो ऊंचे महापुरुष हो, आप इस प्रकार से झूठ कैसे बोलते हो कि मेरे में अवगुण है। तो कहा कि तुम मुझे महापुरुष मानता है तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा। अरे दूसरे की निंदा करता है तो अपने में देखना चाहिए कि हमारे में कोई अवगुण की कमी है क्या। यदि हमारे में अवगुण की कमी नहीं है तो हम दूसरे की निंदा क्यों करें। तो उस आदमी ने उस दिन से व्रत